हेलो प्यारे बच्चों, मैं राम आधार राम TGTSS हिंदी संस्कृत परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जादूगुड़ा आज आप लोगों को शब्द रूप के संबंध में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान एकाग्रचित करके मेरी अनमोल बातों को सुनने का प्रयास करें। देखो, मूल शब्द, मूल शब्दों के रूप चलाए जाते हैं क्योंकि वे पद नहीं होते हैं। रूप चलने के बाद शब्द पद बन जाते हैं तथा संस्कृत में केवल पदों का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में शब्दों के तीन लिंग होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। प्रत्येक लिंग के लिए रूप चलते हैं। जिस अक्षर से शब्द समाप्त हो रहा है उनके रूप अलग अलग होते हैं। जो शब्द अ से समाप्त हो रहा है वे शब्द अकारांत कहलाते हैं, जैसे बालक, अज आदि। इसी प्रकार आ से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। ह्रस्व ई से अंत होने वाले शब्द इकारांत कहलाते हैं। दीर्घ ई से अंत होने वाले शब्द ईकारांत कहलाते हैं। ह्रस्व ऊ से अंत होने वाले शब्द उकारांत कहलाते हैं। अब आगे, अकारांत शब्द जैसे बालक, अज, अश्व, मीन आदि। आकारांत शब्द जैसे लता, निशा, विद्या, कक्षा आदि। ह्रस्व इकारांत शब्द जैसे मति, गति, भक्ति आदि। ईकारांत शब्द जैसे नदी, नारी, देवी, रानी आदि। उकारांत शब्द होते हैं जैसे धेनु, भानु, तनु आदि। शब्द तथा पद में अंतर होता है। यह समझने की बात है कि शब्द अलग होता है और पद अलग होता है। जब तक शब्दों के रूप नहीं चलते हैं वे मूल रूप में ही शब्द कहलाते हैं। इन्हें पद बनाने के लिए ही उनके रूप चलाए जाते हैं। संस्कृत में शब्दों, जिनको अपदों भी कहा जाता है, उन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अतएव पद संज्ञा होने पर ही उनका संस्कृत भाषा में प्रयोग हो सकता है। रूपों के अर्थ किस तरह विभक्तियों, कारक चिन्हों एवं वचनों के अनुसार बदलते रहते हैं, जो इस प्रकार है। देखो, जैसे बाल शब्द का रूप है, बाल शब्द का रूप, अब देखो विभक्तियाँ अलग होता है। विभक्तियाँ 8 विभक्तियाँ हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और लास्ट में आता है संबोधन। और उनके चिन्ह भी अलग अलग हैं। देखो, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने, और उसका कारक कहलाता है कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को, जिसका कारक होता है कर्म। तृतीय विभक्ति का चिन्ह है से या के द्वारा, इसका कारक होता है करण। चतुर्थी विभक्ति के लिए, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है के लिए, इसका कारक होता है संप्रदान। पंचमी विभक्ति जिसका चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है, जिसका कारक होता है अपादान। षष्ठी विभक्ति इसका चिन्ह होता है का के की रा रे री, जिसका कारक है संबंध कारक। और सप्तमी विभक्ति इसका चिन्ह होता है में पै पर, और उसका कारक है अधिकरण कारक। और संबोधन में जो आता है उसका चिन्ह होता है हे भो अरे आदि, इसका कारक को संबोधन कहते हैं। अब देखो बाल शब्द का रूप जो है विभक्ति चिन्ह कारक एक वचन द्विवचन और बहुवचन, इन सब वचनों के अनुसार कारक के अनुसार विभक्तियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अब वो मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे बाल शब्द का रूप है तो प्रथमा विभक्ति में जिसका चिन्ह होता है ने और कारक है उसका कर्ता, तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में होता है बालह, जिसका अर्थ होता है एक बालक ने। द्विवचन में शब्द बनता है बालव, जिसका अर्थ होता है दो बालकों ने। और बहुवचन में शब्द बनता है बालाह, बालाह का अर्थ होता है अनेक बालकों ने। उसी तरह द्वितीय विभक्ति जिसका चिन्ह है को और उसका कारक है कर्म, तो द्वितीय विभक्ति में बाल शब्द का रूप होता है बालम, जिसका अर्थ होता है एक बालक को। द्विवचन में बालव, जिसका अर्थ होता है दो बालकों को। और बहुवचन में होता है बालान, अनेक बालकों को, इसका अर्थ होता है। देखो तृतीय विभक्ति इसका चिन्ह है से कामा के द्वारा, इसका कारक है करण, इसका एक वचन में बनता है बालेन, इसका अर्थ होता है एक बालक से। द्विवचन में बालाभ्याम, इसका अर्थ होता है दो बालकों से। और बहुवचन में बालयः, इसका अर्थ होता है अनेक बालकों से। अब आता है चतुर्थी विभक्ति जिसका चिन्ह होता है के लिए, इसका कारक है संप्रदान, एक वचन में बनता है बालाय, जिसका अर्थ होता है एक बालक के लिए। द्विवचन में बालाभ्याम, दो बालकों के लिए। और बहुवचन में बालेभ्यः, जिसका अर्थ होता है अनेक बालकों के लिए। फिर आगे पंचमी विभक्ति जिसका चिन्ह है से, उसका कारक होता है अपादान, तो बाल शब्द का रूप बनता है पंचमी विभक्ति में एक वचन में बालात, इसका अर्थ होता है एक बालक से। द्विवचन में बालाभ्याम, दो बालकों से। और बहुवचन में बनता है बालेभ्यः, अनेक बालकों से। इसी तरह षष्ठी विभक्ति में जिसका चिन्ह होता है का के की रा रे री, इसका कारक है संबंध, षष्ठी विभक्ति का कारक होता है संबंध कारक। तो षष्ठी विभक्ति में एक वचन में बाल शब्द का रूप बनता है बालस्य, इसका अर्थ होता है एक बालक का। द्विवचन में बालयोः, इसका अर्थ होता है दो बालकों का। और बहुवचन में बालानाम, अनेक बालकों का। और सप्तमी विभक्ति में जिसका चिन्ह है में पै पर, इसका कारक है अधिकरण, एक वचन में बनता है रूप बाले, इसका अर्थ है एक बालक पर। बालयोः, दो बालकों पर। और बहुवचन में बनता है बालेषु, अनेक बालकों पर। उसी तरह सप्त संबोधन में जिसका चिन्ह है हे भो अरे, एक वचन में वह बनता है रूप हे बाल, बाल के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है, इसे बोलते हैं हे बाल, जिसका अर्थ होता है हे एक बालक। द्विवचन में हे बालव, उसके आगे भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह रहता है, जिसका अर्थ है हे दो बालकों। और बहुवचन में वही रूप बन जाता है हे बाला, इसका अर्थ होता है हे अनेक बालकों। इसी तरह से एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो शब्द है शशक, ये भी आकारांत शब्द है, शशक शब्द जो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बनता है शशकः, एक खरगोश ने, द्विवचन में बनता है शशकौ, दो खरगोशों ने, और बहुवचन में बन जाता है रूप शशकाः, अनेक खरगोशों ने। द्वितीय विभक्ति में एक वचन शशकम, इसका अर्थ है एक खरगोश को, द्विवचन में होता है शशकौ, दो खरगोशों को, और बहुवचन में शशकान, अनेक खरगोशों को। तृतीय विभक्ति में एक वचन में शशकेन, एक खरगोश से या एक खरगोश के द्वारा। द्विवचन में शशकाभ्याम, शशकाभ्याम जिसका अर्थ है दो खरगोशों से या दो खरगोशों के द्वारा। और बहुवचन में रूप बनता है शशकैः, शशकैः इसका अर्थ है अनेक खरगोशों से या अनेक खरगोशों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में शशक शब्द के लिए एक वचन में बनता है रूप शशकाय, शशकाय इसका अर्थ है एक खरगोश के लिए। द्विवचन में शशकाभ्याम, दो खरगोशों के लिए। और बहुवचन में बनता है रूप शशकेभ्यः, अनेक खरगोशों के लिए। पंचमी विभक्ति में एक वचन में शशक शब्द का रूप होगा शशकात, एक खरगोश से अलग होने के अर्थ में हो जाएगा, जैसे एक खरगोश दूसरे खरगोश से अलग हो रहा है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में शशकात, द्विवचन में शशकाभ्याम, दो खरगोशों से, और बहुवचन में शशकेभ्यः, अनेक खरगोशों से। षष्ठी विभक्ति में एक वचन शशकस्य, एक खरगोश का या एक खरगोश के या एक खरगोश की। द्विवचन में शशकयोः, शशकयोः इसका अर्थ होता है दो खरगोशों का या दो खरगोशों के या दो खरगोशों की। और बहुवचन में वह रूप बनता है शशका नाम, जिसका अर्थ है अनेक खरगोशों का या अनेक खरगोशों के या अनेक खरगोशों की। सप्तमी विभक्ति में एक वचन में रूप बनता है शशके, जिसका अर्थ होता है एक खरगोश में या एक खरगोश पर। शशक शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन में रूप बनता है शशकयोः, जिसका अर्थ है दो खरगोशों में या दो खरगोशों पर। और बहुवचन में सप्तमी विभक्ति बहुवचन में शशक शब्द का रूप बनता है शशानाम, अनेक खरगोशों में या अनेक खरगोशों पर। संबोधन में हे शशक, इसका अर्थ है अरे एक खरगोश, हे शशकाओ, हे दो खरगोशों, और बहुवचन में हे शशकाह, हे अनेक खरगोशों। तो इस तरह से जो है विभक्ति और वचन के अनुसार हर विभक्ति में और हर वचन में शब्दों का रूप जो है वह बदलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है शब्दों के रूप चलते हैं, और यही शब्द और पद में जो अंतर मैं पहले बता दिया हूँ कि जब रूप चलते हैं तो जो है ये पद बनाने के लिए शब्दों को उनका रूप चलाया जाता है। संस्कृत में शब्दों का प्रयोग नहीं होता, अतएव पद संज्ञा होने पर ही उनका संस्कृत भाषा में प्रयोग हो सकता है। इस तरह से ये मैं जो बताया आपको शब्दों का रूप इस प्रकार चलता है, उसी तरह से जो है आकारांत जो भी शब्द हैं उसी के अनुसार जो है वे रूप चलेंगे। इस तरह मैं बताया, यह जो है आपके लिए यह एक शिक्षाप्रद साबित होगा। अच्छा, मैं बंद करता हूँ, धन्यवाद। ए प्रतिभा कहाँ गया?